Om Shanti. A very good evening to all of you. एक बढ़िया सी एक्टिविटी करने के बाद सब बहुत एनर्जेटिक हो गए होंगे. यस यस. तो भी हम चलते हैं हमने अगले सत्र की ओर. तो सबसे पहले आज का जो हमारा ये सत्र है बहुत सुंदर विषय है. आप सभी देख ही रहे हैं, अ न्यू डायमेंशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. तो आज के सत्र के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हम सबके आदरणीय राजयोगी भ्राता भारत भूषण भाई सब को. हम सब जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय भाई सब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आज की सभा में स्वागत करते हैं. साथ ही साथ मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रदर मिस्टर अनिमेश बनर्जी, जो कि सीनियर प्रेसिडेंट हैं मॉडर्न इंसुलेटर्स फैक्ट्री आबू रोड से हमारे बीच में पधारे हैं. भाई सब का भी बहुत बहुत स्वागत है. कृपया आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए. और इनवाइट करना चाहूंगी ब्रदर मलहे मंडल जी, जो कि एडिशनल जनरल मैनेजर हैं MSTS लिमिटेड, प्रेजेंटली पोस्टेड इन पटना. वो भी कृपया आकर स्टेज पर अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें. हम उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से आज की सभा में स्वागत करते हैं. साथ ही साथ स्टेज पर नम्र निवेदन करती हूँ, बुलाना चाहूंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी, राजयोगा टीचर हैं मोहाली से, हम सबके बीच में पधारे हैं. वो भी कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें. तो अभी हम सब ने हमारे सम्माननीय मंच का शब्दों के द्वारा स्वागत किया. तो ब्रह्मा कुमारी बहनों से नम्र निवेदन है, कृपया आप आकर के बुकेस देकर, तिलक लगाकर और बैजेस पहनाकर हमारे सम्माननीय मंच का स्वागत करें. हम सब भी तालियों की गड़गड़ाहट से सहयोग दे सकते हैं. बहुत अच्छा. अभी जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आज के इस सत्र का जो विषय है, अ न्यू डायमेंशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, विषय बहुत सुंदर है, बहुत रेलेवेंट है. इस भागदौड़ की जीवन के अंदर हम सब जानते हैं, टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. तो उन सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वी नीड टू एड अ डायमेंशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज नथिंग एल्स देन द स्पिरिचुअलिटी, द मेडिटेशन. तो मेडिटेशन एक ऐसा डायमेंशन है जिसको हमें ऐड करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज फॉर द स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, इट इज फॉर द स्पिरिचुअल अवेयरनेस, फॉर द सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो. तो भी ज्यादा समय नहीं लूंगी आज के इस विषय को हमारे सामने स्पष्ट करने के लिए, अपने विचार हम सबके साथ साझा करने के लिए हम सबके बीच में बहुत ही अनुभवी कुशल वक्ता हम सबके समक्ष हैं, आदरणीय राजयोगी भ्राता भारत भूषण भाई सब, जो कि पिछले 47 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर समर्पित रूप से ईश्वरीय सिद्धा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. देशों के अंदर, विदेशों के अंदर अथक सेवाधारी बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ही इज द डायरेक्टर ऑफ ज्ञान मानसरोवर अकेडमी इन पानीपत, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, बहुत सारे टीवी चैनल्स के द्वारा भाई सबको समय प्रति समय इंस्पिरेशनल टॉक्स देने का चांस मिलता है, और अगर कहें बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर भाई सब समय प्रति समय जाकर के अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग विषयों पर अपने अनमोल वचनों के द्वारा, अपने अनुभवी महावाक्यों के द्वारा कहें, वक्तव्य के द्वारा कहें, बहुत दुनिया को, लोगों को लाभान्वित करते हैं। अगर मैं टोटल डिटेल में भाई सब का डाटा पढ़ना चाहूं बाय डाटा, तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 घंटा तो मुझे जरूर चाहिए। इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आदरणीय भाई सब से नम्र निवेदन है कि आज का ये जो विषय है हम सबके बीच में स्पष्ट करें। आदरणीय राजयोगी भ्राता भारत भूषण भाई साहब।
ओम शांति। बहुत ही खुशी हो रही है आप सबको शांतिवन परिसर में इतने सुंदर सभागार में, कॉन्फ्रेंस हॉल में पधारे हुए देखकर। आप सबको ये जो त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई है, इसमें पधारने के लिए आप सबको खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भाग्यशाली आत्माएं यहाँ पहुंच पाती हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक विंग स्पेशल बनाया गया है। 20 विंग्स में से ये भी एक विंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, क्योंकि आप देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी बड़ी पावर होती है, उनकी कलम में कितनी पावर होती है। एक बार कन्विंस होने चाहिए, फिर उनके कलम चलती है, उससे बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। मुझे इसका बहुत अच्छी तरह अनुभव है। अभी अभी वैसे 5 सितंबर को इंडिया में नेशनल टीचर डे मनाते हैं, लेकिन हमने पानीपत रिट्रीट सेंटर में 4 सितंबर को ये रखा था 10 से 1। और बाय द वे, जो उससे पहले 15 दिन पहले कुछ प्रिंसिपल की मीटिंग रखी थी, वो कहने लगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑर्डर कर देगा तो फिर तो 1000+ टीचर सारे पानीपत जिले से आ जाएंगे, और नहीं तो हार्डली 100-200 ही आएंगे प्राइवेट स्कूल, वो भी प्राइवेट स्कूलों से। तो हमने प्रयास किया और फिर एजुकेशन मिनिस्टर से उनको कहलवाया, तो उन्होंने रियली ऑर्डर किया, और सचमुच वहां पे 1100 टीचर 4 घंटे के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम, शिक्षक सम्मेलन हुआ। मैं कहा वाह, ये तो देखो क्या पावर है ऑफिसर की, एक सर्कुलर चला गया तो देखो। मुझे याद है एक बार मैं हिमाचल में, हमारे भ्राता ब्रिजमोहन जी और आशा दीदी ने कहा था कि ORC में प्रिंसिपलों की ट्रेनिंग रखनी है, और कहां हिमाचल, कहां गुड़गांव, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। तो हम गए वहां, सहमत किया, परंतु डायरेक्टर एजुकेशन खुद नहीं निकाल सकता था, तो हम एजुकेशन सेक्रेटरी के पास गए। चीफ सेक्रेटरी थे हर्ष गुप्ता, उन्होंने कहा इनको ध्यानपूर्वक सुन के अवश्य मदद करो। तो उनको हम सारा जब समझाया कि असली जो शिक्षा है, शिक्षा वह जो सभ्य बनाए, शिक्षा वह जो चरित्रवान बनाए, जो शिक्षित करे, दिव्य गुणों से संपन्न करे, वो तो दी नहीं जा रही। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जितना भी मैं उन्हें समझाया, कन्विंस हो गए। कन्विंस होने के बाद उन्होंने कहा अच्छा आप दो कोई मॉड्यूल 4-5 दिन। मैं उनको दिया 5 दिन का, उसने ऑर्डर किया सारे हिमाचल के प्रिंसिपल के लिए कंपलसरी 50-50 के बैच बना के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जाएंगे, और सभी आए वहां पे, कितना एक कलम से रियली कितनी बड़ी बात है कितना सेवा हुआ उससे। तो बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सचमुच भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है। पॉलिटिकल लीडर भी उन्हीं की कलम से ही सारा काम कराते हैं। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको इतनी बड़ी सत्ता आपके हाथों में दी है। आज का टॉपिक है न्यू डायमेंशन इन ए न्यू डायमेंशन इन ए एडमिनिस्ट्रेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन बीइंग। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई चीजें ऐसी है ना, कुछ तो हमें प्रोफेशनल रूप में भी ट्रेनिंग होती रहती है जगह जगह, हर स्टेट में होती हैं और दूर दूर तक भेजते हैं। अभी हमारे करनाल के कमिश्नर गए थे, विदेश गए थे, ट्रेनिंग के लिए ही गए थे, कुछ आईएएस को भेजा था। टाइम टू टाइम जाते रहते हैं कोई ना कोई ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो जो फिजिकल और प्रोफेशनल चीजें तो वो बताते हैं, लेकिन न्यू डायमेंशन किधर, ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन किधर ध्यान खिंचवाती है, वो ध्यान खिंचवाती है हमारे थोड़ा सा उसकी ओर, वैल्यूज की ओर, नैतिक मूल्यों की ओर। अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं तो कितना काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। इसलिए उसको जीवन में कैसे, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको अगर हम जीवन में लाएं तो उससे हमारा सचमुच जो है हम बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो कुछ एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारी सबॉर्डिनेट से भी काम लेते हैं, सबसे लेते हैं, छोटों से भी बड़ों से भी, पर वहां अक्सर करके माहौल देखा जाता है डांट डपट का ज्यादा होता है, ऐसे करो ऐसे करो, क्यों नहीं किया अब तक, क्यों नहीं किया ऐसे कर। क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर रहा हूं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और 5 साल के बाद फिर मैं 37 में रिजाइन देके पूरा डेडिकेट हो गया, तो मुझे अच्छा अनुभव है। तो कितना उससे स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है, लेकिन मैंने देखा कि अगर वही चीजें अगर हम थोड़ा सा पेशेंस और सब चीजों को मधुरता को जीवन में अपना के करते हैं, तो फिर मैंने देखा कि उससे बहुत अच्छा काम होता है। हमारे पास तो कितने अधिकारियों के अनुभव है, बिफोर ज्वाइनिंग दिस मेडिटेशन लाइन कितना स्ट्रेस रहता था, कितना कुछ होता था, और आफ्टर ज्वाइनिंग दिस मेडिटेशन लाइन फिर उनके अंदर कितना फर्क आया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट एवरीवन, हरेक को दिल से प्रशंसा करें। भगवान ने हरेक को कुछ खूबियां तो दी है ना, इसलिए उन खूबियों को आप अप्रिशिएट करें तो आपको बहुत ही ज्यादा उससे रिजल्ट बड़ी अच्छी मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप समझाएं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हम शिक्षा ना दें, वो भी दें, लेकिन जो उसके अंदर खूबियां भगवान ने दी हैं उसको अप्रिशिएट जरूर करें। कभी कभी हम अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट अगर करते हैं तो आप देखना उससे बहुत उत्साह बढ़ेगा और वो कई गुणा काम करते हैं। तो उस एप्रिशिएशन भी केवल फॉर्मल ना हो, दिल से रियलाइज करके, ठीक है ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी फैमिली में भी हर जगह आपके काम की चीज है, आप इसको यूज करना। घर में मिसेज है, मिस्टर है ना, 5-6 लोग होते हैं जिनसे बहुत वास्ता पड़ता है, मिसेज है, मिस्टर है, बच्चे हैं, बॉस है, सबॉर्डिनेट है, इन्हीं से ही ज्यादा वास्ता पड़ता है ना। तो एक संकल्प करके जाएं आबू की धरती से कि हम मिनिमम दिन में एक बार उन्हें अप्रिशिएट जरूर करेंगे, दिल से अप्रिशिएट करेंगे। क्या कहेंगे, आपको कहना है आप बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जब आप इतना ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप कहेंगे, आप तो ऐसे कहें बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह बोलिए ना, क्या कहेंगे। रियली आज की सभा जो बैठी है ना वो बहुत ही अच्छी है। आप अपने लिए भी तालियां बजाएं। मेरा फर्ज है आपको अच्छा कहना। आपका फर्ज क्या है? आप कहें डायस बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा। आप क्यों अच्छे हैं मालूम है? क्योंकि आबू में आना एक पक्का लक्ष्य रख लेना चाहिए। एक भी सेशन मिस नहीं करेंगे। पता नहीं कौन सी बात जहन में उतर जाए जिस पर्पज के लिए आए हैं। तो कल हाल भरा हुआ था, आज कुछ कम है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे आप रेगुलर पंक्चुअल, इसलिए चुने हुए रतन ये आए हैं जिनको सचमुच ज्ञान की इच्छा से आए हैं। इनके लिए खूब तालियां बजाएं। वाह वेरी गुड। अच्छा एक काम करेंगे, आप जब तक आप हैं ना, कल भी हैं, मिलेंगे अभी दिन में, एक दूसरे को जैसे ही मिलते हैं ना आप ये आदत डाल लें। आप कहेंगे ना सर आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। एक और काम करना, आप अपने घर में फोन करना। आज आप शाम के सेशन के बाद डिनर करोगे ना, घर के फोन करके कहना मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूं। क्या? कि आप ना बहुत अच्छे हैं। आप उसका रिजल्ट देखना क्या निकलेगा। ठीक है, करेंगे करेंगे। और डेली कम से कम एक बार जिनसे वास्ता पड़ता है ना जरूर अप्रिशिएट करना है कि आप बहुत अच्छे हैं। जो कहते करेंगे हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, फिर तो आपका कॉन्फ्रेंस में आना सक्सेसफुल। वेरी गुड। अच्छा भाई लोग एक बात ध्यान से समझ लेना, बहने आप घर में जाएंगी अब अपने पति देव को क्या कहेंगे? वो कहेंगे आप सूरज दूसरी तरफ से क्यों निकल रहा है। भाई लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अपने पत्नी को क्या कहेंगे? वही देखो, जितना उनका दिल से आवाज निकला ना आपका इतना नहीं निकल रहा। तभी मैं भाइयों को कहता हूं कि फॉर्मेलिटी ना हो कि सुन तुम बहुत अच्छी हो फटाफट चाय लाओ। मैं इसको दिल से कहना है, ठीक है ना? तो रियली आप कितना काम करती हो, सारा घर संभाल के रखती हो। सचमुच आपके कारण ही मैं माउंट आबू जा पाया हूं, क्योंकि पीछे आप सब जिम्मेवारी संभालते। यू आर ग्रेट। किसी ना किसी तरीके महिमा करनी है, जरूरी नहीं हमें रटे रटाए शब्द बोलने हैं, बट वी हैव टू अप्रिशिएट। ठीक है, आप अपने ऑफिस में भी ये करेंगे तो आप देखना कितना अच्छा कार्य सुचारू होता जाता है उससे। एक दूसरा चीज जो न्यू डायमेंशन की बात चल रही है इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक और बात ध्यान रखें कि अपनेपन की भावना, फैमिली फीलिंग देना, कि हम एक परिवार हैं। कार्यालय में कहीं भी आप ये अगर उपयोग में लाएंगे ना तो आप बहुत सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। देखो घर में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है ना, लेकिन अपनेपन की भावना कैसे होगी? मुझे एक उदाहरण याद आता है, पानीपत के एक एसपी ने मेरे को सुनाया कि मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, देखो सुबह लाइन होती, लाइन परेड पुलिस का होता है ना, फिर एक ऐसी जगह खड़ा जिसमें सब आते हैं परेड करते हैं कांस्टेबल्स, वहां हजार के लगभग होंगे डिस्ट्रिक्ट में, कहते एक ऐसे स्थान पे खड़ा होता हूं जहां से सबने पास होना होता, सब मेरे को गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग के जाते हैं, सकता है 5-10 मिनट में, लेकिन सबसे कनेक्शन जुड़ जाता है। और एक चीज और बताई उन्होंने, किसी भी जिले में जाऊं मैं रोजाना 5 नए से मैं परिचय जरूर प्राप्त करता हूं। रोज 5 कांस्टेबल आएंगे नए, तो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर व्हाटएवर 5 जरूर आएंगे, और एक साल रहा तो उसमें सब कवर हो जाते हैं। उनका डेयरी बनाया हुआ है, नाम नोट करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं, परिवार की बात पूछते हैं, और कोई समस्या है घर में है तो वो भी पूछते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन जितना हो सकता है देते हैं, तो और यदा कदा मिलते हुए पूछते भी। अब आप बताओ वो तो फैमिली मेंबर बन गया ना, जो ऐसा करेगा उसके उसमें कहते मेरा 15-20 मिनट इसमें जाता है, परंतु एक इतना जीवन भर उनकी दुआएं मिलती हैं, और जब तक वहां रहता हूं तब भी दुआएं मिलती कि ये हमारा एसपी साहब नहीं है, ये तो हमारा जैसे पिता की तरह है। तो एक फैमिली फीलिंग दे दी ना, घर की कौन पूछेगा, वही पूछेगा ना जो परिवार का होता है कोई बड़ा। तो इस चीज से फिर कार्य कितना अच्छा चलता है, जब कोई ऐसी फीलिंग दे दे तो फिर तो व्यक्ति जान भी ले ले। यहां क्या है, माउंट आबू में यही तो है, दुनिया देख के हैरान हो जाती है यहां का एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपका ग्रुप तो छोटा आया, इसके बाद इंजीनियर कॉन्फ्रेंस है, वो भी 3-4 हजार आ रहे हैं, लेकिन जो अक्टूबर से शुरू होंगे, 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, 30 नवंबर, हर 15 दिन 6 महीने 20-20 हजार का ग्रुप आता है, और कोई डंडा लेके नहीं घूम रहा होता, चलो भाई रोटी बनी कि नहीं बनी, चलो लोग आने वाले हैं ये करो, चलो ये करना है, सब्जी बनी कट गई कि नहीं, अरे भाई सारे मेहमान आ गए, एक भी नहीं। आप अगर उस प्रोग्राम में कभी आने का मौका मिले, आप देखेंगे जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है, हर काम टाइम पे अपना आप हो रहा है। कारण, सब परिवार के मेंबर हैं, सब समझते हैं जिम्मेवारी, परिवार है ना, परिवार में एक दूसरे को प्यार से रियलाइज कराते हैं, और वो पूरे ड्यूटीफुल होते हैं। हर डिपार्टमेंट का हेड इतना परफेक्ट काम करता है, आप देखो हमारे साउंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, सब चीज ए टू जेड परफेक्ट चल रही है, किसी के ऊपर कोई खड़ा नहीं है। इन सब के लिए तालियां बजा सकते हैं ना। क्योंकि पारिवारिक भाषणा आजकल करने लग गए हैं, कॉरपोरेट में मैंने देखा है सभी ईडी से लेके छोटे तक सब एक ड्रेस पहनते हैं, नहीं? वो इसीलिए यूनिफॉर्म सी बना दी। मैं एक बार बीएचईएल में गया, सबकी एक यूनिफॉर्म, तो इसलिए ताकि बड़ा छोटा ना लगे, हम सब एक परिवार के मेंबर हैं, तभी कार्य बहुत अच्छा चलता है। तो ये चीजें हमारे जीवन में अगर होंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में और भी छोटी छोटी चीजें हैं, एक है पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरी टाइम पॉजिटिव। काफी बातें हमारे नेगेटिव एटीट्यूड के कारण इतना उल्टा पड़ जाती है हमें, तो उससे जो है फिर मानसिक शांति खुद की भी डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरों की भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें हम पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर जाएं। अब पॉजिटिव बनाने के लिए एक स्लोगन याद रखें, वो स्लोगन क्या है, देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग, हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया है। देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग, क्या कल्याण समाया वो हमें सोचना है, खोजना है, मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है। ये पॉजिटिविटी का एक अच्छा स्लोगन है, हमेशा पॉजिटिव, एक उसका नेगेटिव भी है देखना, एक पॉजिटिव भी है देखना। एक रहट में दो बाल्टियां घूम रही थी, एक हंस रही थी एक रो रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से कहा, क्यों रो रही हो? कि मैं इसलिए रो रही हूं, वर्षों से भरकर आती हूं फिर खाली हो जाती हूं, देखो मेरी बदकिस्मत। कि तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूं, मैं वर्षों से इसमें खाली जाती हूं फिर भरी आती हूं, लोगों के काम आती हूं, देखो मेरी अच्छी किस्मत। बात तो एक ही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है। क्या डिफरेंस है? सोच का। कितना सुंदर किसने कहा, सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल। नो नीड टू चेंज द बोट्स, इट्स ओनली द इश्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बोट, उसकी दिशा को बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए जब भी कभी स्ट्रेस आए, कुछ हो रहा है, आप डायरेक्शन ऑफ बोट चेंज करो। किधर चेंज करेंगे? ब्रह्मा कुमारी सेंटर की ओर। दीदी को फोन लगाओ, चे वहां हो सके तो जाओ, जब मन बहुत डिस्टर्ब हो ना, अच्छा आज की इवनिंग सेंटर पे 1 घंटा व्यतीत करेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, बस आपकी दिशा बदल गई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा ही टाइम होता है जिसमें देखो, हाँ कल मेरा ऊपर लेक्चर था स्पोर्ट्स वालों में, स्पोर्ट्स विंग का भी प्रोग्राम चल रहा है, चारों खिलाड़ी, हमने तीन क्वेश्चन पूछे। हाँ, आपसे भी पूछूं मैं? बताएंगे, पर सच सच बताने होंगे। पूछूं? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, जिनको किसी कारणवश, ऑफिस काम के, फैमिली कारण, फिजिकल डिजीज, किसी कारण एक्सट्रीम टेंशन रहता है, सच्चाई से इंद्र सभा में बैठे हैं, सच बोल, जिनको काफी टेंशन बहुत रहता है, हाथ खड़ा करो यहां आने से पहले। यहां तो चलो नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15। ओके, सच बोला, गुड। दूसरा क्वेश्चन कि सर फिर कभी कभी ये टेंशन इतना हावी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, फिर हमें कभी कभी सुसाइडल थॉट भी चलते हैं, यार इससे तो मर जाएं। जिसको ऐसे भी कभी कभी थॉट चलते हैं वो हाथ खड़ा करो, सच्चाई से करो करो। 1, 2, 3 करो करो करो। 4, 5 ओके, कहीं उन्हें ऐसे करके ऐसे कर लिया। थर्ड पूछूं? बताएंगे सच? सच बताने क्या जिगरा चाहिए? तीसरा प्रश्न ऐसा है, बताएंगे? इधर उधर देख के नहीं करना, सच है तो हाथ खड़ा करना। फिर जी सर कभी कभी वो फिर सुसाइडल थॉट वाला एक काला दिन ऐसा आया, इतना हावी हो गया कि मैंने प्रैक्टिकल सुसाइड का अटेम्प्ट किया। ये अलग बात है, भगवान ने, डॉक्टरों ने, मेरे परिवार ने मुझे बचा लिया। जिसने कभी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया वो हाथ खड़ा करो जीवन में, सच्चाई से। प्रभु के घर में तो सच बोलना है ना, किसी ने किया? अच्छा, देर इज वन, ओके, सच बोला, ताली बजाओ मैं सच। वहां भी काफी थे, प्रैक्टिकल वाले भी 5-6 थे। और दूसरे भी, अब आप सोचिए कितना जरूरी है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, कभी भी स्ट्रेस में तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पति ने पत्नी से कहा कि एक कप चाय ले आओ, चाय ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, भरसक प्रयास किया, आधी चाय गिर गई, आधी बच गई। अब तीन नजरिए, नंबर 1 आंखें फूटी, नीचे चाय गिरा दी, नंबर 2 अरे ये क्या किया, चलो आगे ध्यान रखना, नंबर 3 अरे वाह ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली। कितना सुंदर नजरिए पे, कितना सुंदर किसी शायर ने कहा है, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये डिपेंड करता है हमारे नजरिए। अच्छा, जो सच्चाई से जो कहते हैं सर हम भी थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी है, वो जरा हाथ खड़ा करना, थर्ड टाइप जिसने कहा ना अरे वाह ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली, जो कहते हैं मैं भी सर बिल्कुल ऐसा ही हूं या ऐसे ही हूं, वो जरा हाथ खड़ा करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, 4-5 है ना। अच्छा, अब आप में से केवल वही खड़े रहे जिसको किसी भी सिचुएशन में क्रोध नहीं आता, जिनको आता है वो बैठ जाए, जिसको कभी कभी गुस्सा आता है बैठ जाए। अच्छा। अब आप सोचिए, एक बात सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को कभी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आता है जब रिएक्शन हो। अगर उसे कोई गाली भी देगा ना तो वो कहेगा अरे वाह फूलों की वर्षा हो रही है, उसने तो पॉजिटिव ही देखना है। चलो शुक्र करो आप बैठ गए, क्योंकि मैं गया था सिंगरौली, 300 अधिकारी बैठे थे, 300 उनकी फैमिलीज मिसेज बैठे थे। तो जैसे मैंने पूछा इज देयर एनीवन ऑफ सच टाइप ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, मिस्टर गोयल थे सीजीएम, यस आई एम हियर, खूब क्लैपिंग हुआ जी। जैसे ही वो बैठा उनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई, वो कहती आई एम डिसएग्री विद हिम, उससे ज्यादा क्लैपिंग हो गया। सर इसको छोड़ के देख लो सभी एग्री हैं। गोयल साहब कहने लगे, मैं गोयल साहब यही एक सर्टिफिकेट है जो बता सकती है आप कितने पॉजिटिव। फिर वो भी हंसने लग गए। मतलब ये है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें ये पॉजिटिविटी अगर जीवन में अपनाएंगे तो उससे हम बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और बहुत अच्छा हमारा जीवन वो हो जाएगा, श्रेष्ठ बनेगा। वो सेव तो नहीं किया वो? नहीं ना, ओके। तो इस तरह हम अपने आप को इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा यूज करें। एक और चीज है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। कई बार काम बहुत होता है ना, इसलिए हम कहते हैं तीन शब्द को छोड़ो, कौन से? हरी वरी करी, हरियप। कई बार आप देखना जल्दबाजी में काम और अधिक बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हरियप का जो है ना वो नेचर छोड़ देना चाहिए, है ना। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस रखो। कोई सिचुएशन नहीं बदल रही, आप इतने परेशान हो रहे हैं। वी कांट चेंज द सिचुएशन बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड सिचुएशन। हम हालात को नहीं बदल सकते परंतु हम ख्यालात में तबादला तो ला सकते हैं ना। अपने ख्यालातों में तबादला लाना है, इसलिए पेशेंस रखें। इफ देयर इज नो पेशेंस डेफिनेटली यू विल बिकम पेशेंट। इसलिए बड़ा जरूरी है थोड़ा सा पेशेंस रखें, ऑल टुगेदर सिचुएशन बदल जाएगी। हमें ये प्रयास करना चाहिए। इस तरह वरी, अननेसेसरी वरी, चिंता कितनी हम करते रहते हैं, तो चिंता नहीं करनी है हमें। चिंता की बजाय चिंतन करना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, वो हमें बहुत महान बना देगा। और इसी तरह करी मीन ऑयली एंड स्पाइसी चीजें हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, शरीर फिर डिस्टर्ब होता है, हेल्थ, और फिर अल्टीमेटली माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। इससे बहुत जरूरी है इन सब चीजों को हम कोशिश करके अपने जीवन में धारण करेंगे तो जीवन बहुत ही महान बनेगा। एक एक चीज पर हम प्रयास करते चलें। अपने जीवन का पर्पज जरूर याद रखें, मेरी जीवन का असली पर्पज क्या है। व्हाट इज द पर्पज? टू अर्न द मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, बच्चों को खड़ा करना, ये करना, क्या इज इट द पर्पज ऑफ माई लाइफ? मुझे जिंदगी का पर्पज क्या है, उस पर्पज को अपने सामने बनाना है। मुझे जीवन में कुछ महान कार्य करना है, मानवता की सेवा करना है, इसी को पर्पज कहेंगे ना। तो अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा बना दो जो व्यर्थ के लिए टाइम ही ना रहे, ऐसा हम जीवन को पर्पज अपना अच्छा बनाएं तो जीवन बहुत ही महान बन जाएगा। टाइम तो भागता जा रहा है और टाइम वेस्ट करेंगे, अगर टाइम को नष्ट करेंगे तो एक दिन टाइम भी आपको नष्ट कर देगा ना। इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना, एक एक मिनट हमारा सफल होना चाहिए। ऐसा हम पुरुषार्थ करें एक एक मिनट हमारा सफल हो। एफिशिएंसी आपकी इतनी बढ़ जाएगी, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस मेडिटेशन करते रहें तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, थकावट आपको नहीं होगी। हमारे यहाँ देखो मॉर्निंग सुबह 4 बजे मेडिटेशन में सब आ जाते हैं, कहीं तो 3:30 पहुंच जाते हैं, 4 बजे पहुंच जाते हैं। तो एक अच्छा है ना, कुछ तो डिसिप्लिन होने चाहिए ना हमारी लाइफ में। अगर हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कंपनी को, ऑफिस को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? सेल्फ कंट्रोल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से जो 4 बजे तक बिस्तर त्याग देते हैं वो कृपया हाथ खड़ा करो। अच्छा, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनमें से वो हाथ खड़ा करना जो बीके नहीं, गेस्ट हैं, जो 4 बजे तक गेस्ट बिस्तर त्याग देते हैं, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, थोड़े हैं, फिर भी ताली बजाएं उनके लिए, बहुत अच्छी बात। और जो 5 बजे तक बिस्तर त्याग देते हैं, 5 वाले भी काफी हैं, गुड। और जो 6 बजे तक तो बिस्तर त्याग देते हैं, वो हाथ खड़ा करो, वो भी देखो कितने हैं। जो 7 बजे तक बिस्तर त्याग देते हैं, वो भी हैं। और जो 8 बजे तक बिस्तर त्यागते हैं बड़े आराम से, वो हाथ खड़ा करो, 8 वाला कोई महानुभाव है। जो संडे को 8 बजे के बाद ही उठते हैं, वो हाथ खड़ा करो, देखो कितने सारे हैं। हाँ, अब डिसिप्लिन माना ये नहीं कि इट इज द 6 डेज डिसिप्लिन और 5 डेज, बट नॉट ऑन हॉलीडेज। हॉलीडेज क्या, जीवन भर का आपका अनुशासन, मीन आपने जीवन का वो हैबिट बना ही ली है। उसको अनुशासन कहेंगे ना। हम अक्सर करके कहते हैं चार या उससे पहले जो उठते हैं वे हैं भगवान के योगी बच्चे। योगी माना दो और दो का योग करो, कहते हैं जोड़, उसका कनेक्शन सही जुड़ा हुआ है। पांच बजे तक उठते हैं वो हैं भगवान के भगत बच्चे, मतलब बेटर बट स्टिल सर्चिंग। जो छह बजे तक उठते हैं वे हैं भगवान के भोगी बच्चे, मतलब पड़ा रहे और सुख भोग ले। और जो सात बजे तक उठते हैं वे हैं भगवान के रोगी बच्चे, और आठ या उसके बाद उठते हैं वे भगवान के बच्चे ही नहीं। अब आप सोचो कहां तक पहुंचेंगे आप, कौन से बच्चे बनेंगे? माउंट आबू आए ना, कोई शुभ संकल्प करने आए ना, कौन से बच्चे बनेंगे? हाँ, योगी बच्चे है ना बनेंगे। हाई जंप देना है तो चार बजे आ जाओ, और अदरवाइज पांच तक तो जरूर आओ, आओ कोशिश करो। चार बजे तो हम उसे कहते हैं अमृत वेला, जिस वक्त अमृत बढ़ता है उस वक्त जो कनेक्शन जोड़ता है ना, मेडिटेशन करता है, उसे अमृत प्राप्त होता है। अभी राष्ट्रपति महोदय शिमला में आए थे तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा मैडम हमने सुना है, हम तो बहन जी कहते हैं, आदरणीय बहन जी, हमने सुना है कि आप रोजाना सुबह अमृत वेला करती हो मेडिटेशन। उन्होंने मेडिटेशन रूम राष्ट्रपति भवन में बनाया हुआ है, देखिए उन्होंने कहा डेली 3:30 to 5 में मेडिटेशन करती हूँ, अमृत वेला करती हूँ। क्यों नहीं करूंगी? अगर मैं शक्ति नहीं लूंगी तो सारे राष्ट्र को फिर कैसे चलाऊंगी? ये उनका जवाब। दूसरा क्वेश्चन था, मैंने कहा मैंने सुना जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उसी दिन ऑर्डर पास कर दिया कि राष्ट्रपति भवन में नॉन वेज नहीं बनेगा, तो कहती बिल्कुल किया है। आप सोचो राष्ट्रपति में तो हजारों एम्प्लॉयज हैं और हर धर्म के हैं, कईयों का तो नॉन वेज के बिना सरता नहीं, और कितने देश के आते हैं, मीटिंग भोज सबका होता है। कहती बिल्कुल ये पास कर दिया है, एक जीभा के लिए, जीवों का, मेरा काम केवल लोगों को सुख देना नहीं, प्राणियों को भी, उनकी हत्या हो उससे जो मांस बने मैं किस तरह अलाउ करूंगी। 1947 से लेके पहली बार किसी राष्ट्रपति भवन में नॉन वेज पे बैन लगा, तो कितना अच्छा उनका शुभ संकल्प देखो। खुद वो कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, राजा के उदाहरण होना चाहिए ना, उससे प्रभाव तो पड़ता है ना, छोटे वालों पे भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल वो मेडिटेशनल फूड ही स्वीकार करती है। बेलग्रेड में गए थे, वहां भी आई थी तो मैंने देखा उनकी टीम साफ थी, बिल्कुल सात्विक भोजन बनाने वाली। तो ये है हमारे ऊपर, एक हमें सीखने की चीजें मिलती हैं, उन चीजों को अगर हम अपने अनुशासन में लाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बनता है। एक हम कोशिश करें अपने कार्यालय में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बैलेंस को जीवन में जरूर धारण करें। जीवन में बैलेंस है तो लाइफ ब्लिसफुल बन जाएगी। बैलेंस पे कितना कुछ दिखाते हैं, देखते हो आप नट नटे कितना चमत्कार करते हैं, बैलेंस एक रोप पे कितना दुनिया को अजीब लगता है, सारा बैलेंस की तो कहानी होती है। बैलेंस बिगड़ा तो कमाल हो गए, है ना। एक बार हम कार रिपेयर करा रहे थे, एक और कोई रिपेयर कराने आया, आपस में इंट्रोडक्शन हुआ, मैं कहा क्या करते हो, कहते सर्कस में। मैं कहा क्या करते हो, कहते ये कार है ना, ये कार चलाता हूं। मैं किस में, कहते मौत के कुएं में। मैं मौत का कुआं, मैंने सुना तो था, बचपन में देखा भी था। मैं कहा मौत का कुआं, उसमें तो मरने के पूरे चांसेस होते हैं। कहते बिल्कुल पूरे चांसेस होते हैं। मैं कहा फिर क्यों ऐसा जॉब करते हो, कहते इंश्योरेंस कराया हुआ है। देखो मरने से भी डर नहीं है। फिर मैं कहा अच्छा सफल कैसे हो, तो कहते उस वक्त इतनी बड़ी परीक्षा होती है, चारों ओर लोग देख रहे होते हैं, कई लड़कियां वाह वाह कितना, थोड़ा भी हमारा ध्यान उनकी ओर चला जाए ना मरे, हम तो बस अपने रोल में पूरे एकाग्र होते हैं और खूब उसको चलाते हैं। और काफी वर्षों से चला रहा है, 5 वर्षों से, 7 वर्षों से बताया सफल। क्या शिक्षा मिली? एक तो बैलेंस, और दूसरा एकाग्रता, जो आपको काम अलॉट हुआ है ना, अर्जुन की आंख में बिल्कुल पूरा मन एकाग्र होना चाहिए, तब आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ेगी। वो एकाग्रता चाहिए। इस तरीके बैलेंस भी बहुत जरूरी है, लव एंड ला का भी बैलेंस चाहिए। कई बार लाफुल भी, आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी। एक जनरल मैनेजर थे थर्मल प्लांट के, मैं उन्हें जब कहता था ना मीठा बोलो, जेडी मल्होत्रा उनका नाम था, प्रेम से बोलो, धीरे बोलो, कहते कमाल है। अरे कोई चोर चोरी कर गया, मैं उसे कहूं चोर जी आपने चोरी तो नहीं की, वो कहां काबू आएगा, छित्तर से काबू आएगा वो। फिर हमने उनको एक बात समझाई और वही मैं आपको कहूंगा, लव एंड ला का बैलेंस। श्याम दाम दंड, ये हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में भी कहा है, पहले आप प्यार से ही समझाएं, अगर उसकी समझ में ना आए एक बार फिर मौका दें, फिर उसे दाम चेतावनी दें, फिर लास्ट में दंड भी है। लेकिन दंड देते हुए आपकी कॉन्शियस बाइट नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये जो है मैंने विधिवत किया, और उसमें भी शुभ भावना रख के कि भाई देख ये तेरे ही सुधार के लिए कर रहा हूं, नहीं तो तेरी आदत ये सुधरने वाली नहीं, अंदर गुड विशेष रख के। तो इस तरीके से ये बैलेंस लव एंड ला का हमें करना है, और घर की जिम्मेवारियां भी, ऑफिस के, इन सब का भी बैलेंस चाहिए। थैंक यू, ओम शांति, धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं लास्ट में एक संकल्प आपसे चाहता हूं, आप यहां आए हो बहुत खुश हो गए हो, खाना अच्छा, सफाई अच्छी, लेक्चर अच्छे, आनंद आ गया, जिंदगी बन गई, ठीक है। तो कम से कम ये तो है बड़ा पावर हाउस, छोटे छोटे स्टेशन आपके एरिया में जो सेंटर है ना वो है, वहां कनेक्शन बना के रखना। जो कहते हैं चाहे प्रतिदिन, चाहे मैं सप्ताह में मिनिमम एक बार तो जरूर सेंटर पे जाऊंगा, वो जरा हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो, तब आपका आना सफल। इनके लिए ताली बजाओ। एक बात ध्यान देना, मैं लास्ट उसी पे समाप्त कर रहा हूं, मैं एक बार 10 इंजीनियर लाया था, एससी थे, चीफ इंजीनियर थे, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस थी, रास्ते भर वो ट्रेन में राजधानी में आए, ताश खेलते आए, गप्पे मारते, मैंने कहा कोई बात नहीं पहुंचने दो। जब यहां पहुंचे तो उनका बिल्कुल यही था, कायल हो गए, जिंदगी भर नहीं कुछ सीखा, अब तो हम रोज ज्वाइन करेंगे, पक्का संकल्प करके गए। वापस में ट्रेन पकड़ी, मैंने देखा उन्होंने ताश नहीं निकाली, और वो यही पूछते रहे, उषा दीदी क्या सुनाया, आशा दीदी क्या सुनाया, उसने क्या सुनाया, उसने क्या। फिर अजमेर जब ट्रेन पहुंच गई, अजमेर से चली, फिर ताश निकाल के बैठ गए। मैंने कहा भाई क्या हो गया अब, कहते है, ऐसे है हमारी आत्मा अब मैग्नेटिक जोन से बाहर आ गई है। अभी तो आप सब संकल्प करोगे क्योंकि आप मैग्नेटिक जोन में बैठे हो, जब आप वहां पहुंचोगे ना तब भी आप इन संकल्पों को जरूर निभाना। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय भाई सब का। भाई सब ने आज के सेशन को बहुत लाइटली हंसाया भी है, साथ साथ बहुत गंभीरता से कुछ ऐसी वैल्यूज जो हमें जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में एडअप करने की, भाई सब ने कहा एप्रिसिएशन एक ऐसी वैल्यू है जिसके माध्यम से हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक एथिकल वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो, पेशेंस हो, और साथ ही साथ लव एंड लॉ का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो इन वैल्यूज को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एक नई दिशा जरूर लेगी। तो एक बार फिर से हम सब जोरदार करतल ध्वनि से भाई सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी सुनाई नहीं दे रहा, देर इज अ क्वेश्चन, वी कैन आस्क द क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। जी
थैंक यू।
बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। कहते आपने ऑडियंस से तो पूछा है कि भाई गुस्सा किसको आता है, तो क्या डायस से भी पूछ सकते हैं कि गुस्सा किस किस को नहीं आता है? भाई है आप में से कोई जो इनको नहीं आता, हाथ खड़ा करो।
इट इज अ परसेंटेज, वी कैन से इट इज अ परसेंटेज।
लेकिन मैं इसमें ये जवाब देना चाहूंगा, गुस्से की बहुत डिटेल है, आज की हम महावाक्य सुनते हैं उसमें भी आया है, मतलब क्रोध करना, एक हाथ उठाना ये तो महाक्रोध, मुख से ऐसे बोलना ये भी क्रोध, मन में किसी के लिए नेगेटिव सोचना ये भी क्रोध, किसी के लिए आप रूठ गए, कोई कहता है ओम शांति आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये भी अंदर क्रोध है। आप कहते हैं नहीं मेरे को गुस्सा ना आ जाए ना इसलिए मैं चुप रहता हूं, लेकिन अंदर आप भरे पड़े हैं, कभी ना कभी निकलेंगे इकट्ठे। इसी तरह किसी के लिए हेट है ये भी एक क्रोध का अंश है। फिर किसी का आप समझें कि एक सबसे भयंकर है जिसको कोई विरला ही पहचान पाएगा, वो क्या है कि आप ऊपर से तो बहुत मीठे हैं और जी क्या जी सब कुछ जी ठीक जी, और चुपचाप किसी का जड़े बिल्कुल काट देते हैं, किसी बड़े से मिलके उसे पता भी नहीं लगता उसका पत्ता साफ, ये तो सबसे महाक्रोध है। इसलिए भावनाएं सबके लिए शुभ होना ये है वास्तव में क्रोध मुक्त होना। जहां तक भाई ने जब प्रश्न पूछ ही लिया तो मैं आपको अपना पर्सनल सुनाऊं, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूं कि उसने ये वरदान दिया है। काफी वर्षों से मुझे ये याद नहीं कि मैं एक दिन भी आग बबूला हुआ, एक बार भी आग बबूला, और ये सर्टिफिकेट मैं नहीं देता, मैं ज्ञान मानसोर रिट्रीट सेंटर में रहता हूं, मेरे साथ 20-25 का ग्रुप रहता है, वो मेरे परिचय में ये बताते हैं कि हमने इतने वर्षों से, 15 वर्षों से, कोई कहता 20 वर्षों से मैं साथ रहता हूं, बातें तो बहुत देखी हैं लेकिन कभी क्रोधित होते नहीं देखा। मेरा इस पे मेरे लक्ष्य ये है पक्का, कल भी शेयर कर रहे थे हम जयंती दीदी से कुछ पुरुषार्थ की बात, पक्का ये लक्ष्य कुछ भी हो जाए कैसा भी हो लेकिन मुझे क्रोधित नहीं होना, ये पक्का संकल्प। और इसमें फिर भी बहन ठीक कह रही है, इट इज ए परसेंटेज, हम ये नहीं कहते परफेक्ट बन गए, जो मैंने सूक्ष्म मन की चीजें बताई हैं मन में भी कभी ना आए वो भी काफी हद तक नहीं आता, पर फिर भी मैं इसको 100% ना कहके बट अबाउट 90% है, 95% है, तो कई और सूक्ष्म चेकिंग करते हैं कि कहीं भी जरा भी तो नहीं, इसको जीतना एक दृढ़ लक्ष्य रखा हो। थैंक यू वेरी मच, ओम शांत।
थैंक यू भाई सर। अभी हम सबके बीच में है आदरणीय भ्राता अनिमेश बैनर्जी जी, जो कि सीनियर प्रेसिडेंट।
या कोई मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना पड़ता है, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। क्यों डिफिकल्ट काम है? क्योंकि हम लोगों को ये समाज के अंदर रह के, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रह के, हम लोगों को एक साइड में डिलीवर करना पड़ते हैं, एक साइड से हम लोगों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी रहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हजार हजार लोगों को जिम्मेदारी रहते हैं, उनको साथ कुछ ऐसा पर्सनालिटी के साथ हम लोग को हैंडल करना पड़ता है जो कुछ दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, और उसी बीच में हम लोगों को एक रास्ता तैयार करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना पड़ता है, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। वेरी डिफिकल्ट जॉब। उसमें डेफिनेटली हम लोगों को हर एक प्रकार का फीलिंग्स आते हैं, कभी तमोगुण आते हैं, कभी रजोगुण आते हैं, कभी सत्वगुण आता है, ये हमेशा हम लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। गुस्सा वाली सिचुएशन डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि हर चीज हमारा पसंद के हिसाब से होगा, अगर ऐसा होता तो दुनिया बदल जाता। हर एक इंसान दुस्ता है, हर एक सिचुएशन दुस्ता है, हर एक परिस्थिति दुस्ता है, हर एक चैलेंज दुस्ता है। जो हम लोगों को करना पड़ता है और जहां पे ये सेशन के लिए हम बहुत ही इंटरेस्टेड रहे और हमको लगे कि हमारा लोगों को, कंपनी के लोगों को इसमें अटेंड करना चाहिए, कि जो डिसीजन हम लोग लेते हैं एज मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, दैट शुड बी एज मच एज पॉसिबल डिसीजन विदाउट अटैचमेंट टू इंडिविजुअल बेनिफिट। जो चीज हमको भगवद गीता ने सिखाया है कि जब हम कुछ कर्म करना है, कर्म सबको करना है, देखिए हम लोग सब छोड़ छाड़ के सब हर आदमी सन्यासी नहीं बन सकते हैं, हम लोगों को इस समाज में रहना है, जिम्मेदारी निभाना है, फैमिली है, लार्जर फैमिली है, बट उस सिचुएशन में काम करने के टाइम में जब हम जितना हो सके न्यूट्रल रह सकते हैं, किसी के ऊपर प्री कॉन्सीव्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए, किसी को अपीयरेंस में हमको उसमें काफी टाइम डिसेप्टिव होता है, कई कई लोगों को ऐसा होता है कि अपीयरेंस पसंद नहीं आता है, कई लोगों को बात करने में शुरू में पसंद नहीं होता है, उसको हमको एक किनारे में हटाना चाहिए, क्योंकि उस इंसान के अंदर कोई ऐसा अच्छे क्वालिटी है कि उस इंसान ने ऐसा कुछ शायद बोलना चाहते हैं जिसको सुनना बहुत जरूरी है। बिना सुने बिना समझे हम लोग कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हम लोग को नहीं लेना चाहिए। जहां तक आए स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। हम हमेशा मैनेजमेंट को और स्पिरिचुअलिटी को एब्सोल्युटली साइड बाय साइड लेके चलते हैं। ये हम करते क्या है, हम सेम अनुशासन करते हैं जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमारा सिमिलर टाइप ऑफ अनुशासन चाहिए। डिसिप्लिन इज मस्ट बोथ इन स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एवरी डे लाइफ। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग सर्वाइव, नथिंग एग्जिस्ट। एंड फॉर एवरी एक्शन हमको डीप इन्वॉल्वमेंट, डीप कन्विक्शन होना चाहिए, जो हमको मेडिटेशन लेके आते हैं। व्हाई वी शुड मेडिटेट, मेडिटेशन इज इन आवर ओपिनियन कंसेंट्रेशन, डीप कंसेंट्रेशन। यू आर कंसेंट्रेटिंग ऑन समथिंग, फॉर समथिंग एंड टू फोकस ऑन समथिंग, दैट is one of the sole purpose of meditation. Absolutely, in spirituality, connecting to God, connecting to eternal soul, connecting to the universe, that is one side of looking at it. But jab hum log per day kuch time mein agar meditate karke, jab hum log ko mind bahut disturbed hote hain, jab humko kuch aisa situation aate hai ki decision nahi le pate, aapko charo taraf डिसीजन जो है कहीं पे भी डैमेज कर सकता है, कहीं पे अच्छा कर सकता है, तो हम लोगों को हमारा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है। वी नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस टू आवर इनर सोल, एम आई डूइंग द राइट थिंग। सो फॉर दैट, इन माई एक्सपीरियंस, दिस इज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई डू डीप मेडिटेशन एवरी डे, एंड वेन एवर आई गेट टाइम एंड वेन एवर आई एम इन अ डिस्टर्ब माइंड सेट, I try to at least close my eyes and try to concentrate my mind to an infinite place and try to short out certain questions, cool down, calm down my mind before I take any major actions. So, this is how in administrative life, in managerial life, we should try to connect spirituality, try to practice spirituality and apply our spiritual feelings to our everyday action, so that the action is not biased, the action is not prejudiced, the action is for the right, the action is right at the circumstances and the situation, and right at the eyes of the person against whom or the situation you're taking action. The best action, the best judgment is the judgment when the person or when the situation you're taking a judgment, he appreciates your action. This was the right decision taken. Then you are non-biased. And then you get the right kind of respect in the society and in your people. I have seen people in industrial unrest. Aisa ghatna hua, 10-15,000 logon ke beech mein industrial unrest chal raha hai. Massive violence ho raha hai. I have seen people, leaders, not union leaders, management leaders, coming fearlessly in people and talking straight their mind with clarity, trying to explain the situation. Not a single human being reacted to him because everybody is convinced on the action, convinced that this man, whatever he is doing, he has a very sound spiritual base and he is not doing this for causing any harm to anybody. So, in short, two things we practice. Ek bar hum, I am Lucknow mein MBA final year convocation mein ek cheez, uske logon ne pucha tha ki Bhagavad Gita mein kaun sa cheez mein hum management action mein leke aayenge. Sabse badi cheez tha ekdam last mein, jab Dhritarashtra ji ne Sanjay ko pooch raha hai ki tum kya dekh rahe ho, ye yudh mein kya hua, ultimately end mein kya hua aur aisa ant isko kyun hona tha. तो बोल रहा ऐसा अंत होना था क्योंकि यहां पे दो चीज है. एक है कृष्णा हु इज मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजी, अनदर इज अर्जुना हु इज मास्टर ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस. एंड व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट स्ट्रेटेजी एंड फोकस, इट हैज टू विन, इट कैन नॉट बी डिफीटेड. एंड फॉर द राइट कंसंट्रेशन वी नीड अ spiritual mind with meditative practice. That takes you to the right kind of focus and concentration, and ultimately at the end of the day, you win. Thank you very much for your time and concentration. Thank you.
धन्यवाद है भाई सब ने, बहुत सुंदर अनुभव हम सबके बीच में रखे. भाई सब के कुछ प्री एंगेजमेंट से हमें पता चला, तो इसलिए बहनों से नम्र निवेदन है कि वो परमपिता परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात लेकर के आएंगे और ईश्वरीय प्रसाद, और भाई सब को भ्राता भारत भूषण भाई सब उनको ऑनर भी करेंगे, शॉल पहनाकर भ्राता भारत भूषण भाई जी हमारे ब्रदर अनिमेश बैनर्जी को ऑनर भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम सब भी करतल ध्वनि से उनका सहयोग देंगे, ईश्वरीय प्रसाद देकर भाई सब का अभिनंदन कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो और टाइम निकालकर फिर से परमपिता परमात्मा के घर में जरूर पधारें. थैंक यू वेरी मच भाई सब. अभी हम सबके बीच में हैं ब्रदर मल्हे मंडल जी, जो कि एडिशनल जनरल मैनेजर हैं MSTS लिमिटेड कोलकाता से. Presently he is posted in Patna. वो भी अपने अनुभव हम सबके बीच में रखेंगे. भ्राता मल्हे मंडल जी.
ओम शांति. परमादरणीय भ्राता भरत भूषण भाई, बीके मीना दीदी, बीके सुमन दीदी, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम लोग सभी भाग्यवान हैं. आज हम लोग सब मिल रहे हैं यहां पे, और जैसा मैं देख रहा हूं और जैसा मैं सुन रहा हूं और जैसा महसूस कर रहा हूं, शायद हम लोग पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे. फिजिक्स ने ये प्रूव कर दिया है, देयर इज अ मिरर इमेज ऑफ टाइम. टाइम हैज अ मिरर इमेज. पर्हैप्स वी हैव मेट much before, perhaps 5,000 years back. And I would certainly believe that we will love to meet each other 5,000 years from now also. Hai ki nahi? Hai ki nahi? So we all look forward to that. So I think Bhratasri ne jis tarah se is topic ko ye kiya aur Animesh bhai ne bhi usko elaborate kiya, main apna jo journey hai start is tarah se karta hoon ki meri schooling Bhubaneswar, Odisha mein, college Ranchi, Jharkhand mein, service Bihar, Delhi, Jharkhand, then back to Kolkata, then again back to Bihar, Patna. So this has been a small journey, and in that journey, my education was completed, my service life, whatever I have learned. इस पूरे दौरान में एक चीज जो आज के इस टॉपिक में रिलेवेंट है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे. लाइफ इज अ मिरर, राइट? इफ यू गिव लव यू गेट द लव इन रिटर्न. एंड इट इज अ फैक्ट दैट इफ यू लव योर फेलो बींग्स, अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ उस तरह का बर्ताव करते हैं कि वो आपसे वही बर्ताव देखना चाहते हैं, आप वही चीज पाओगे. यू सी व्हाट यू वांट टू सी. एंड अदर आपको उसी तरह से अपने को मॉडरेट करना है, अपने लाइफ में अपने लाइफ के पर्पस को उस ढांचे में लाना है कि यू आर अलाइंड टू द ग्रेटर गुड. कभी कभी आप के सहयोगी को खाली पीठ पे एक हाथ रखने से ही वो आपका काम कर देता है. यू जस्ट हैव टू शेयर योर विजन विद द राइट पर्सन, मेक द राइट टीम, एम्पावर देम विद ऑल द फैसिलिटीज, गेट द राइट फीडबैक, करेक्ट व्हेन इट इज पॉसिबल, एंड देन गेट बैक टू द वर्क. दिस इज लूप. दिस लूप, लाइक ऑल द टेक्निकल पीपल नो, इट्स अ PDCA. सो आप प्लान करते हो, डू करते हो, चेक करते हो, एक्ट, and then get back to the loop again and improve. The same happens to the human beings. Aajkal kyunki hum is safar mein jab aaye the, ek mera daur tha 15 saal pehle, you get things early in life, you get a bit of ego. So luckily I met Sanjay bhai in Patna. He took me to a Brahma Kumari center. Mridula behan thi. Aaj ke date mein हम पाटलिपुत्र एक सेंटर है, बहुत छोटा सा. सुभाष दीदी हैं, एंड आई गेट ऑल दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिव एनर्जी जो आज हम लोग यहां पे लेके जा रहे हैं. सो एवरी डे व्हेन यू कनेक्ट, यू गेट दैट काइंड ऑफ एनर्जी टू गिव बैक टू द सोसाइटी. बिकॉज अल्टीमेटली आप यहां आए हैं, आप सभी को भगवान ने कुछ ना कुछ गिफ्ट देके भेजा है. सो यू हैव टू ओपन दैट गिफ्ट. इसलिए आज का समय, ये प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट. यू ओपन इट एंड यू डिस्ट्रीब्यूट इट. बोलते हैं बांटने से बढ़ता है. सो इफ यू कीप योर गिफ्ट टू योर सेल्फ एंड यू डोंट डिस्ट्रीब्यूट इट विद अ लार्ज हार्ट, यू एंड अप विद अ पैक्ड गिफ्ट. जो प्रेजेंट लिफाफे में बंद रहेगा, वो तो प्रेजेंट कभी किसी के काम नहीं आएगी. So you have to open it, you have to share more and more with people. एक अंग्रेजी में गाना हम लोगों ने कॉलेज के दिनों में सुना था, another brick in the wall. So you just don't treat your people as resources. ये कोई सीमेंट बालू छड़ की बात नहीं हो रही है. Everybody is a valuable person and each person is capable of very innovative thoughts. कभी कभी हम लोग जैसे नीचे कोई वर्कर है शॉप फ्लोर लेवल में, या कोई हेल्पर है, या कोई पियोन है, सपोर्ट स्टाफ है, कभी कभी उनके पास भी इतना इम्पोर्टेंट इंसाइट्स होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको वो फीडबैक दे रहा है. कभी कभी जैसे अभी सुबह हमने सुना कि सिंटेक्स कंपनी के एक मामूली वर्कर के फीडबैक के वजह से आज सिंटेक्स पानी टंकी का राजा है. So you have to be open to that kind of insights from people from all level, and when you are open to everybody, people also reciprocate with the love, with the respect, with the trust. that is very important in today's time. So I thank Beena Di. Thank you, Bhata Bhargavasan Ji. It was really good. This 5-day program has been an eye-opener for most of us. हम सब फिर दोबारा से आप सभी से मिलेंगे और इस मिलन का बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
थैंक यू वेरी मच भाई साहब. बहुत अच्छे विचार अनुभव के रूप में भाई साहब ने हम सबके समक्ष रखे. अभी शुरू से लेकर के हमने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए और हर सेशन के अंदर हम सब जानते हैं हमारा यहाँ आने का लक्ष्य है अपने जीवन के अंदर कुछ वैल्यूज को धारण करना. अबव एडमिनिस्ट्रेटर्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड टू लिव अ हैप्पी लाइफ वी नीड वैल्यूज ऑल्सो एंड वी नीड पावर्स ऑल्सो. तो उन वैल्यूज को चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे वो पेशेंस की वैल्यू हो और चाहे वो लव एंड लॉ का बैलेंस हो, इन सब चीजों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली धारण करने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है, जो सबसे बड़ी बात हमें सिखाती है, वो राजयोग मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है. तो राजयोग मेडिटेशन जिसके माध्यम से इन वैल्यूज को अपने जीवन में हम ला सकते हैं, तो उसी मेडिटेशन का अभ्यास अभी हम करेंगे. तो हमारे बीच में राजयोग मेडिटेशन एक गाइडेड कमेंट्री के साथ हमें करवाएंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी, जो कि राजयोगा टीचर हैं, मोहाली से विशेष हम सबके बीच में पधारे हैं और पिछले 15 वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. एंड एज फॉर एज हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, शी हैज डन हर बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएसएनएल चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. तो अभी हम ज्यादा समय ना लेते हुए सत्र के इस अंतिम दौर में नम्र निवेदन करूंगी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी से कि वो हमें मेडिटेशन का अनुभव करवाएंगे. आदरणीय सुमन बहन जी.
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज. काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज.
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन फल सरकार.
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा.
Yeah.
चलना है। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
अपने आप को बिल्कुल फ्री करके बैठें, थोड़ा सा अलर्ट होकर कंफर्टेबल बैठें, अपने सारे अटेंशन को केवल अपने ऊपर ले आए, महसूस करें इस पूरे हॉल में केवल आप ही हैं, अपने आप से बात करते हैं। ये कुछ घड़ियां केवल मेरे अपने लिए हैं, अपने आप को चार्ज करने के लिए हैं। अपने ध्यान को मस्तक के बीच में ले जाएं, जहां तिलक लगाते हैं, एक चमकता हुआ सितारा, आई द बीइंग, ये मैं हूं, ह्यूमन बीइंग का बीइंग पार्ट वो मैं हूं। इस कॉस्ट्यूम को पहने हुए हर रोल को प्ले करने वाली शक्ति, एक सूक्ष्म सा सितारा, मस्तक के बीच में अपनी सीट पर विराजमान है। ये शरीर सोफे पर बैठा है, मैं अपनी सीट पर एकदम स्टेबल और शांत हूँ। मेरा रोल अलग है और मैं अलग हूं।
मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ। परमात्मा पिता जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, ऊंचे से ऊंची शक्ति है, वो ऑलमाइटी है, तो मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। आइए मन और बुद्धि की उड़ान से कुछ घड़ियों के लिए यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। इस कर्म क्षेत्र से परे नीले आसमान को भी पार करते बहुत ऊपर, जहां मेरे पिता परमात्मा मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सुप्रीम लाइट है, परम ज्योति है, मैं उनके सामने हूँ। परमात्म शक्तियाँ उनको लेते जाएं। परमात्मा पिता से अनंत शक्तियां मुझे मिल रही हैं। अनकंडीशनल लव, उसे महसूस करते जाएं। ये परमात्म प्रेम बिल्कुल निश्चिंत करने वाला है। मेरा मन एकदम हल्का और शक्तिशाली बन गया है। इस हल्केपन को अनुभव करते जाएं। परमात्म प्यार और परमात्म शक्तियों को अपने अंदर समेट कर लौट आए इसी कर्म क्षेत्र की ओर, मस्तक के बीच में खुद को अनुभव करें, एक पावरफुल बीइंग के रूप में अब अपने आप को ले चलते हैं अपने लोगों के बीच में, जिनसे हम रोज मिलते हैं, चाहे परिवार है चाहे ऑफिस है, अब देखें अपने आप को उनसे व्यवहार करते हुए, मेरा नजरिया बदल चुका है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये सब भी इस रोल से परे चैतन शक्ति हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी विशेषताओं को देखने की शक्ति अब मेरे अंदर आ गई है। इस नए नजरिए से उनकी विशेषताओं को हम देख पा रहे हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार अब बदलने लगा है। उनके प्रति हमारी भावनाओं में अब कंपैशन आ गया है। ईगो की दीवार हट चुकी है, मुझे रियलाइज हो रहा है हर कोई अपनी जर्नी पर है, हर किसी में अच्छाई भी है तो कुछ कमियां भी हैं। कमियों से पहले अब मुझे विशेषताएं नजर आ रही हैं। जिससे सारा वातावरण सारा माहौल बदलने लगा है। और मेरे मन का सुकून बढ़ गया है। मेरी मन की स्थिति अब पहले से ज्यादा स्टेबल है। ये शक्ति मुझे हर रोज अपने पिता से लेनी है। अपने आप को महसूस कराएं, स्वीकार करें, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय सुमन बहन जी का। बहुत सुखद और आनंद देने वाला अनुभव हम सब ने किया। अभी सत्र के बिल्कुल अंतिम चरण में बहनों से फिर से नम्र निवेदन करूंगी कि वो ईश्वर पिता के घर से ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय प्रसाद लेकर के आएंगे। और भ्राता भारत भूषण भाई सब हमारे आज के जो गेस्ट हैं ब्रदर मलहे मंडल जी, उनको सम्मानित करेंगे ईश्वर पिता के घर से ईश्वरीय सौगात प्रदान करके, और साथ ही साथ ईश्वरीय प्रसाद उनको प्रदान करेंगे। हम सब भी अपनी करतल ध्वनि से उनका सहयोग दे सकते हैं। तो एक बार फिर से हमारे आदरणीय सम्माननीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी भाई बहने जो समय पर पहुँच करके इस सत्र को बहुत ध्यान से आप सबने सुना, और आशा है कि इसका फायदा अवश्य आप जरूर ही लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सत्र यही समापन करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सत्र की ओर, वैलेडिक्ट्री सेशन। ओम शांति।